कुछ विद्वानों का मत है कि वाक्य प्रकरण विशेषकर वाक्य विश्लेषण की पढ़ाई हिंदी व्याकरण के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परंपरागत व्याकरण से इनका मेल नहीं बैठता। खासकर संस्कृत के विद्वान इस पक्ष में नहीं हैं कि अंग्रेजी शैली का वाक्य विश्लेषण हूबहू हिंदी छात्रों को पढ़ाया जाए। उनकी धारणा का आधार यह है कि संस्कृत व्याकरण में वाक्य अध्ययन का महत्व नहीं, वहाँ शब्द का ही वर्चस्व है। यही कारण है कि सभी देसी भाषाओं के व्याकरण में वाक्य अध्ययन की उपेक्षा की जाती है। हिंदी गद्य का विकास संस्कृत गद्य की परंपरा में नहीं आता। इसका व्यवस्थित विकास अंग्रेजी के जमाने में अंग्रेजी गद्य के आधार पर ही हुआ। हिंदी वाक्य रचना शैली पर अंग्रेजी गद्य का पूरा असर है। अस्तु, जब हम अंग्रेजी वाक्य का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, तब हिंदी वाक्य का भी अध्ययन करते हैं। विराम चिन्हों, वाक्यों का जोड़, उपवाक्यों का परस्पर संबंध समझे बिना ना तो वाक्यों का सही अर्थ लग सकता है और ना किसी प्रकार का विचार ही इसमें आ सकता है। आजकल जबकि हिंदी में मुख्यतः कानूनी और राजकीय अथवा वैज्ञानिक भाषा में लंबे लंबे वाक्य अनेक भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए सीखे जा रहे हैं, वाक्य के अध्ययन को प्रेरणा देने का विशेष महत्व बढ़ जाता है। वाक्य की परिभाषा, शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें कोई बात पूर्णतः समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए, श्यामा बांसुरी बजा रही है, इस शब्द समूह से यह समझ में आया कि बांसुरी बजाने का कार्य श्यामा द्वारा हो रहा है। शब्द कर्म, संस्कृत में व्याकरण की अधिक अच्छाई के कारण शब्द कर्म की समस्या जटिल नहीं हुई है, पर हिंदी में यह सुविधा नहीं। हिंदी वाक्य में शब्द का ठीक क्रम और स्थान पर रखने से ही सही अर्थ का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत वाक्य है शांता पुस्तक पठती। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, शांता पठती पुस्तक अथवा पुस्तक है पठती शांता, पर अर्थ सदैव एक निकलता है। हिंदी में शांता पुस्तक पढ़ती है तो ठीक है, किंतु यदि पढ़ती है पुस्तक शांता तो बात अच्छी नहीं लगेगी। अतः वाक्यों में शब्दों का उचित क्रम देने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला, हिंदी वाक्य रचना का साधारण नियम यह है कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म अथवा पूरक शब्द और अंत में क्रिया रखी जाए। उदाहरण के लिए, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, कांता बीमार हो गई। पहले वाक्य में वे कर्ता, पुस्तक, कर्म और पढ़ रहे हैं क्रिया है। दूसरे वाक्य में कांता, कर्ता, बीमार, पूरक और हो गई क्रिया है। यदि किसी वाक्य में दो कर्म हो तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे आता है। उदाहरण के लिए, श्वेता ने संध्या को पुस्तक दी। यहाँ संध्या का गौण कर्म पहले और पुस्तक मुख्य कर्म पीछे आया। अन्य कारकों के शब्दों में उन शब्दों के पूर्व रखे जाते हैं जिनसे उनका संबंध रहता है। उदाहरण के लिए, पेड़ से पत्तियाँ गिरी। यह अपादान कारक बताने वाला शब्द पेड़ से अपने से संबंधित शब्द पत्तियां पहले आया। प्राय विशेषण अपने विशेष्य से पूर्व क्रिया और विशेषण क्रिया से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोमल अच्छा बालक है, राधा अच्छा गाती है। यहाँ प्रथम वाक्य में अच्छा विशेषण लड़का विशेष्य से पूर्व और द्वितीय वाक्य में अच्छा क्रिया विशेषण गाती क्रिया से पूर्व आया है। अर्थ, और परिभाषा। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य विश्लेषण संज्ञा है। आपके पास पुष्पों की एक माला है जो रंग बिरंगे पुष्पों से गुथी गई है। आप इस माला को तोड़कर प्रत्येक रंग को पृथक पृथक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि माला कितने रंगों के पुष्पों से बनाई गई है। इस प्रकार एक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के अथवा एक ही श्रेणी के कई उपवाक्य हो सकते हैं। वाक्य को जब आप उसके उपवाक्यों में विभक्त कर देते हैं अथवा वाक्यों को तोड़कर उसके वाक्यों को पृथक कर देते हैं और बताते हैं कि वाक्य अमुक प्रकार का है तथा अमुक कार्य करता है, तब आप उस वाक्य का उपवाक्य विच्छेद कर देते हैं। किसी वाक्य का उसके भागों अथवा उपवाक्यों में विभाजन करना और उनका परस्पर संबंध दिखलाना वाक्य विच्छेद अथवा वाक्य विश्लेषण कहलाता है। भेद। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा सहसृष्ट अथवा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। उदाहरण के लिए कृष्णा प्रतियोगिता में भाग लेती है। यहाँ कृष्णा एक उद्देश्य और प्रतियोगिता के लिए भाग लेती है विधेय है। सहसृष्ट अथवा संयुक्त वाक्य। सहसृष्ट अथवा संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। उदाहरण के लिए कांति आई और कहने लगी कि दिव्या बीमार है। यहाँ कांति आई और कहने लगी दोनों प्रधान उपवाक्य हैं। तीसरा कि दिव्या बीमार है आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार यह एक संयुक्त उपवाक्य है। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक अथवा अधिक आश्रित वाक्य हो। उदाहरण के लिए सिंहगधा ने कहा कि वर्षा बीमार है। यहाँ सिंहगधा ने का प्रधान उपवाक्य है और वर्षा बीमार है आश्रित उपवाक्य है। साधारण वाक्यों का विश्लेषण। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ प्रकट हो। किसी वाक्य को कई भागों में इस विचार से प्रकार बांटना चाहिए कि प्रत्येक पद में पारस्परिक संबंध प्रकट हो, उसका विश्लेषण कहलाता है। साधारण वाक्य के विश्लेषण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होता है। पहला उद्देश्य कर्ता कर्ता का विस्तार। दूसरा विधेय क्रिया पूरक कर्म कर्म का विस्तार। कर्ता कर्म और क्रिया के में उनके विशेषण संबंधी भेद नीचे दिए गए हैं। उद्देश्य पहला बालक विधेय फल खाता है। उद्देश्य दूसरा लड़कियां विधेय नाचती है। उद्देश्य तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका विधेय समूचे विश्व में फैले हुए हैं। उद्देश्य चौथा दौड़ती हुई एक लड़की ने विधेय दर्शकों को प्रभावित कर लिया। पांचवा उद्देश्य सूर्य की किरणें विधेय अब ओजोन की परतों को प्रभावित करने लगी हैं। उद्देश्य कभी एक शब्द होता है और कभी कई शब्दों से मिलकर बनता है। इस प्रकार वाक्य संख्या एक में उद्देश्य बालक एक शब्द है। चतुर्थ वाक्य में यह कई शब्दों का समुदाय है जिसमें केवल लड़की प्रधान शब्द है। हम यह पाते हैं कि विधेय कभी तो एक शब्द होता है और कभी कई शब्दों का समूह होता है। इस प्रकार प्रथम वाक्य में विधेय फल खाता है केवल एक शब्द है। प्रथम वाक्य में सर्वाधिक आवश्यक शब्द पहुंच गई। जब किसी वाक्य का कर्ता कई शब्दों में बनता है तब उसमें केवल एक से अधिक शब्द काम होता है। या प्रधान शब्द संपूर्ण उद्देश्य भाग में साधारण उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, रास्ते का थका हुआ पथिक सो रहा है। इस वाक्य में पथिक साधारण उद्देश्य है। क्रिया के साथ कौन अथवा किसने लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर उद्देश्य होता है। साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता शब्द सर्वदा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक, संज्ञा अथवा समूह होता है जो संज्ञा का काम कर देता है। उदाहरण के लिए, वस्त्र सूख रहा है, वह विद्यालय जा रही है। बेईमान लोग सर्वदा सुखी नहीं रहते। उसके बारे में बार बार रोने से संदेह पैदा हो गया। उससे क्या कहा जाए समझ नहीं आता। उपयुक्त वाक्यों को देखते समझने में स्पष्ट हो जाता है। प्रथम वाक्य में साधारण उद्देश्य संज्ञा है। द्वितीय वाक्य में साधारण उद्देश्य सर्वनाम है। तृतीय वाक्य में साधारण उद्देश्य विशेषण है जो संज्ञा की भांति प्रयुक्त है। चतुर्थ वाक्य में साधारण उद्देश्य क्रियार्थक संज्ञा है। पंचम वाक्य में साधारण उद्देश्य एक उपवाक्य है जो संज्ञा की भांति प्रयुक्त है। जब समूचा उद्देश्य भाग कई शब्दों से मिलकर बनता है तब कर्ता शब्द किसी एक विशेषण का काम देता है। यह कर्ता का विस्तार अथवा उद्देश्य वर्धक कहलाता है। उदाहरण के लिए, सुंदर चीजें मन को भा जाती हैं। गर्जने वाले बादल कभी बरसते नहीं। ऋतु के पिता एक व्यवसायिक हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कुशल अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन वाक्यों में निम्नलिखित तथ्य सुस्पष्ट हो जाते हैं। पहले वाक्य में उद्देश्य वर्धक विशेषण है। दूसरे वाक्य में असमाप्ति बोधक विशेषण है। तीसरे वाक्य में उद्देश्य वर्धक संबंधकरण की दशा में एक संज्ञा है। चौथे वाक्य में उद्देश्य वर्धक समानाधिकरण है। पांचवें वाक्य में उद्देश्य वर्धक एक शब्द समूह है जो विशेषण का काम देता है। विधेय कभी तो एक शब्द का होता है, कभी कई शब्दों का समूह होता है। जब विधेय केवल एक शब्द का होता है तब वह शब्द सर्वदा क्रिया होता है, क्योंकि बिना क्रिया के प्रयोग के हम कुछ भी नहीं कह सकते। जब विधेय कई शब्दों से मिलकर बनता है तब सर्वाधिक आवश्यक शब्द क्रियापद होता है। जैसे कर्ता शब्द किसी विशेषण अथवा शब्द समूह से जो विशेषण की भांति प्रयुक्त है विशेषित होता है, वैसे ही विधेय में क्रिया शब्द किसी क्रिया विशेषण अथवा शब्द समूह से जो क्रिया विशेषण का काम होता है विशेषित होता है। यह वाक्य विशेषण में क्रिया का विस्तार कहलाता है। उदाहरण के लिए, फूल प्रत्येक स्थान पर बिखरे गए। रचना बलिया गई, मैं वहां घूमने के लिए जाऊंगा। वह जाकर विद्यालय में घूम रहा है, मेरे आते ही तुम चले जाना। निम्नलिखित उदाहरण नीचे दिए गए हैं। क्रम संख्या एक, उद्देश्य क्रिया विधेय फूल, विधेय बिखरे हुए, उद्देश्य दूसरा, रचना विधेय गई बलिया। समानाधिकरण वह विशेषण शब्द है जिससे विशेषण में कोई गुण विशेष अथवा विशेषता पैदा नहीं होती। कर्म संख्या तीन, उद्देश्य मैं विधेय वहां घूमने के लिए जाऊंगा। कर्म संख्या चार, उद्देश्य वह विधेय घूम रहा होगा जाकर विद्यालय में। उद्देश्य क्रम संख्या पांच, तुम विधेय चली जाना मेरे आते ही। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है। क्रम संख्या एक में क्रिया का विस्तार अधिकरण कारक की दशा में क्रिया विशेषण का काम दे रहा है। कर्म संख्या दो में क्रिया का विस्तार व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का काम दे रहा है। कर्म संख्या तीन में घूमने के लिए संप्रदान कारक में क्रिया विशेषण का काम दे रहा है। क्रम संख्या चार में पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का विस्तार हो रहा है। क्रम संख्या पाँच में क्रिया का विस्तार दो शब्दों का समूह है जो क्रिया विशेषण का काम दे रहा है। पहला, सशिष्ट संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण। संयुक्त वाक्य दो अथवा अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। उदाहरण के लिए, वह घोड़ा पीछे अड़ गया और भीड़ पर पड़ गया। यहाँ प्रत्येक स्वतंत्र उपवाक्य साधारण वाक्य है। दूसरा, वे नृत्य के बड़े प्रेमी थे, भिन्न भिन्न प्रकार के राग गाते थे और नृत्य करते मस्त हो जाते। संयोजक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच और वह तथा ए भी आते हैं और उन वाक्यों का संग्रह करते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं, रूस का भी ध्यान भारत ने अपनी ओर आकर्षित किया है। विभाजक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच या वा अथवा किवा किया चाहे क्या न कि और नहीं तो आते हैं और उनमें से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनों का त्याग प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, नृप अभिमान मोह बस किम्बा हर अनोहु सीता जगदम्बा, चाहो वहां जाओ चाहे बाजार जाओ, तुम पढ़ने आए हो ना कि खेलने। विरोध दर्शक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में पर, परंतु, प्रत्युत, अपितु, किंतु, लेकिन, वरन, बल्कि आते हैं। इन अवयवों का पहले उपवाक्य निषेध अथवा परिमित प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, मैं वहां जाने वाला था किंतु रुक गया। उपयोगी तालिका एक दृष्टि में। क्रम संख्या एक, उपवाक्य मैं कल मुंबई जा रहा था, भेद प्रधान उपवाक्य, संयोजक कुछ भी नहीं, संबंध कुछ भी नहीं। उपवाक्य किंतु पिताजी ने रोक लिया, भेद प्रधान उपवाक्य, संयोजक किंतु, संबंध का समानाधिकरण। उपवाक्य और उन्होंने समझाया, भेद प्रधान उपवाक्य, संयोजक और संबंध समानाधिकरण। कि उपवाक्य की परीक्षा के उपरांत घूमने जाना, भेद संज्ञा उपवाक्य, संयोजक की, संबंध समझाया का पूरक। उपवाक्य मैं आगे बढ़ गया, भेद प्रधान उपवाक्य, संयोजक कुछ भी नहीं, संबंध कुछ भी नहीं। और वह पेड़ की छाया में ठहर कर कहने लगा, भेद संज्ञा उपवाक्य, संयोजक और संबंध का समानाधिकरण। उपवाक्य की मुझसे चला नहीं जाता, भेद संज्ञा उपवाक्य, संयोजक की, संबंध कहने लगा। उपवाक्य सेवक, तीसरा उपवाक्य सेवक को बुलाओ, भेद प्रधान उपवाक्य, संयोजक कुछ भी नहीं, संबंध कुछ भी नहीं। उपवाक्य और उससे कहो, भेद प्रधान उपवाक्य, संयोजक कुछ भी नहीं, संबंध कुछ भी नहीं। उपवाक्य कि वह मेरे लिए दूध लाए, भेद संज्ञा उपवाक्य, संयोजक की, संबंध कहो का कर्म। चौथा उपवाक्य एक दुर्बल यात्री मेरे द्वार पर आया, भेद प्रधान उपवाक्य, संयोजक कुछ भी नहीं, संबंध कुछ भी नहीं। जो उपवाक्य जो ठंड से ठिठुर रहा था, भेद विशेषण उपवाक्य संयोजक जो संबंध यात्री की विशेषता उपवाक्य और कहने लगा भेद प्रधान उपवाक्य संयोजक और संबंध का समानाधिकरण कहने लगा का कर्म कि आप मुझे कमरे में गर्म होने दें भेद संज्ञा उपवाक्य संयोजक की संबंध कारण बताता है उपवाक्य क्योंकि मुझे सर्दी लग गई भेद संज्ञा उपवाक्य संयोजक क्योंकि संबंध समय बताता है उपवाक्य कल जब बड़े जोर की आंधी चली थी भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य संयोजक कल जब समय बताता है उपवाक्य और पानी बरस रहा था भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य संयोजक और संबंध समानाधिकरण परिणाम दर्शक परिणाम दर्शक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में इसलिए सो अस्तु और अतः आते हैं ये अव्यय अलग अगले उपवाक्य को पिछले उपवाक्य का फल होना प्रकट करते हैं उदाहरण के लिए वह वहां चला गया अतः यह काम नहीं हो सका व्याख्या सूचक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में अर्थात जैसे मनु मानो जिमी इत्यादि आते हैं ऐसे अवयव आसानी से समझ में न आने योग्य कठिन वाक्यों की व्याख्या करते हैं उदाहरण के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह का व्याख्यान क्या था मानो बम के गोले फूट रहे थे वह नहीं समझता कि वह इस पार लगेगा या उस पार अर्थात वह असमंजस में है मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण मिश्रित वाक्यों के विश्लेषण में सबसे पहला काम उसके प्रधान उपवाक्यों की खोज करना है तत्पश्चात आश्रित उपवाक्य अथवा आश्रित उपवाक्य को जो प्रधान उपवाक्य से संबंधित है ढूंढना चाहिए फिर पता लगाना चाहिए कि प्रधान उपवाक्य से ये किस भांति संबंध रखते हैं तथा यह कि वे आपस में क्या संबंध रखते हैं मिश्रित वाक्य के विश्लेषण में निम्नलिखित बातें देनी चाहिए पहला उपवाक्य दूसरा उपवाक्य का भेद उदाहरण के लिए प्रधान उपवाक्य विशेषण उपवाक्य तीसरा संयोजक अब ध्यानपूर्वक निम्नलिखित मिश्रित वाक्य के विश्लेषण का अध्ययन कीजिए जब कभी यह गीत वह सुनता था तब वह बूढ़ा मनुष्य जो उस घर में रहता था कहता था कि व्यर्थ के गीत हैं यह मिश्रित वाक्य तीन आश्रित उपवाक्य रखता है पहला जब वह व्यक्ति उत्तर देता प्रधान उपवाक्य दूसरा जब कभी यह गीत सुनता था कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहता कि विशेषता प्रकट करता है जो उस घर में रहता था विशेषण उपवाक्य मनुष्य की विशेषता प्रकट करता है दूसरा उदाहरण वह सोचता है कि तुमने जो रुपए वहां भेजे थे उन्हें मैंने नहीं लिए उसने कहा कि मैंने जब जो चाहा उस काम को पूरा किया यह मिश्रित उपवाक्य तीन उपवाक्य रखता है पहला उसने कहा प्रधान उपवाक्य दूसरा कि मैंने उसे पूरा किया संज्ञा उपवाक्य, तीसरा जब जो चाहा कालवाच्य क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य परिभाषा। वास्तव में संज्ञा उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना विशेष उद्देश्य और विधेय रखता है और एक संज्ञा का काम देता है, विशेषकर कर्म का। पहला संज्ञा उपवाक्य बहुधा ही की अथवा जो से आरंभ होता है। उदाहरण के लिए वह कहता है कि मैं आज नाचूंगा। दूसरा यही कारण है जो मैं उससे नहीं बोलता। जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से प्रथम आता है तब की का लोप हो जाता है और प्रधान उपवाक्य के पूर्व यह जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए फिर से कहो मैं सुनूंगा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखाकृत शब्द समूह को ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा था। दूसरा मैंने उससे कहा था कि तुम यहाँ से जाओ। प्रथम रेखाकृत पद समूह उसे यहाँ से जाने के लिए अपना विशेष उद्देश्य अथवा विधेय नहीं रखता, अतः यह वाक्यांश है। यह वाक्यांश कहा था क्रिया का कर्म है। चूंकि यह संज्ञा का काम देता है इसलिए इसे संज्ञा का वाक्यांश कहते हैं। द्वितीय रेखाकृत पद समूह तुम यहाँ से जाओ अपना एक विशेष उद्देश्य और विशेष रखता है, इसलिए यह एक उपवाक्य है। यह कहा था कि क्रिया का कर्म है और एक संज्ञा का काम देता है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। उसने सुना था कि वह एक वर्ष कष्टकारक है। यहाँ यह वर्ष कष्टकारक है सुना था क्रिया का कर्म, इसलिए यह संज्ञा का काम करता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य परिभाषा। विशेषण उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना एक उद्देश्य और विधेय रखे तथा विशेषण का काम दे। विशेषण उपवाक्य जो अथवा किसी इसके बदले हुए रूप में तथा प्रधान उपवाक्य सो अथवा वह अथवा उनके बदले हुए रूप से आरंभ होता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखाकृत शब्द समूह को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला गहरी आँखों वाली नायिका मेरी है। दूसरा वह नायिका जिसकी आँखें गहरी है मेरी है। प्रथम शब्द समूह गहरी आँखों वाली नायिका की विशेषता प्रकट करता है, अर्थात यह नायिका संज्ञा शब्द का गुण प्रकट करता है और विशेषण का काम देता है, इसे विशेषण पद कहा जाता है। दूसरा शब्द समूह जिसकी गहरी आँखें हैं भी नायिका की विशेषता प्रकट करता है और एक विशेषण का काम देता है, चूंकि यह अपना एक उद्देश्य और विधेय रखता है इसलिए इसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना विशेष उद्देश्य और विधेय रखता है तथा एक क्रिया विशेषण का काम देता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखाकृत शब्द समूह को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला आंधी आने पर वे एक घर में छुप गए। दूसरा जब आंधी आई तब वे एक घर में छुप गए। स्पष्ट है कि प्रथम और द्वितीय दोनों वाक्यों में रेखाकृत शब्द समूह क्रिया विशेषण का काम देते हैं, क्योंकि वे छुप गए क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने छुप जाने का कार्य कब किया था। प्रथम रेखाकृत शब्द समूह देखते ही हम पहचान जाते हैं कि यह एक क्रिया विशेषण पद है क्या। दूसरा रेखाकृत शब्द समूह क्रिया विशेषण पद है नहीं, यह पद नहीं है क्योंकि यह एक पद के गुणों के विपरीत अपना एक उद्देश्य और विधेय रखता है और इस प्रकार एक वाक्य सा जान पड़ता है, परंतु वास्तव में यह एक वाक्य का टुकड़ा है। शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का अंश होता है और अपना अलग उद्देश्य और विधेय रखता है उपवाक्य कहलाता है। क्योंकि उपवाक्य जब आंधी आई क्रिया विशेषण का काम देता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्यांश जो संज्ञा का कार्य करता है। दूसरा विशेषण वाक्यांश जो वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। तीसरा क्रिया विशेषण वाक्यांश जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए और विचार कीजिए कि प्रत्येक उपवाक्य में कौन सा कार्य करता है। पहला मैं पाता हूँ जहाँ जहाँ वह जाती है, संज्ञा वाक्यांश। दूसरा मैं उस स्थान पर जाता हूँ जहाँ जहाँ वह जाती है, क्रिया विशेषण वाक्यांश। तीसरा जहाँ जहाँ वह जाती है मैं भी जाता हूँ, क्रिया विशेषण वाक्यांश। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम किसी उपवाक्य को तब तक नहीं कह सकते कि कौन सा उपवाक्य जब तक है, जब तक कि वाक्य को हम अच्छी तरह पहचान न लें कि वह कौन सा कार्य करता है। उपवाक्य विषयक उपयोगी तथ्य। चूँकि एक संज्ञा उपवाक्य मिश्रित वाक्य में एक संज्ञा का काम देता है, अतः यह निम्नलिखित से संबंधित हो सकता है। पहला एक क्रिया का कर्ता, दूसरा किसी सक्रमक क्रिया का कर्म, तीसरा किसी संज्ञा का समानाधिकरण, चौथा किसी अपूर्ण अकर्मक क्रिया का पूरक। निम्नलिखित प्रत्येक मिश्रित वाक्य में संज्ञा उपवाक्य एक क्रिया का कर्ता है। पहला वह कब लौटेगा अनिश्चित है, दूसरा मैंने जो कहा था सच था, तीसरा तुमने सातवनक से कैसे मित्रता की यह एक गूढ़ रहस्य है, चौथा उसने तुम्हें क्यों मारा इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, पांचवा मैं वहां जाऊंगा निश्चित नहीं है। अधोलिखित प्रत्येक मिश्रित वाक्य में संज्ञा उपवाक्य एक सक्रमक क्रिया का कर्म है। पहला तुम कैसे यह कह सकते हो उसे क्या हो गया है, दूसरा उसे नहीं पता वह यहाँ कब आएगी, तीसरा मैंने पढ़ा है कि यह चकाचौंध हरदम के लिए नहीं है, चौथा तुम बताओ कि तुम्हारी बेटी कितने वर्ष की हो गई है, पांचवा कैसे मालूम वह घर पर है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में संज्ञा उपवाक्य समानाधिकरण है। पहला उसका कथन है कि तुमने उसे अंधेरे में पीटा है विश्वास योग्य नहीं लगता, दूसरा उसके इस विश्वास ने कि वह एक दिन आईएएस अधिकारी बन जाएगा उसे प्रसन्न कर दिया। निम्नलिखित प्रत्येक मिश्रित वाक्य में संज्ञा उपवाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया का पूरक है। पहला यह बात है जो मैं चाहता हूँ, दूसरा प्रसन्नता है कि वह अपने घर लौट आएगा, तीसरा उसका आग्रह है कि उसे टीम में शामिल किया जाए, चौथा वह है जो एक मनुष्य को होना चाहिए। कभी कभी होना धातु के साथ कुछ निश्चित विशेषण मिलकर उसे सकर्मक सा होने की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी दशा में जो संज्ञा उपवाक्य बाद में जोड़ा जाता है वह कर्मकारक का काम देता है। मैं आश्वस्त हूँ कि वह इस वर्ष सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। दूसरा, हम सबकी चाह है कि तुम परिणय सूत्र में बंध जाओ। जैसा कि हमने देखा है कि विशेषण उपवाक्य मिश्रित वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य है जो विशेषण का काम देता है, और प्रधान उपवाक्य में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। एक विशेषण उपवाक्य एक संबंधवाचक विशेषण अथवा संबंधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय से आरंभ होता है। उदाहरण के लिए, पहला, वह एक कायर व्यक्ति है जिसको सभी अपमानित करते हैं। दूसरा, वह व्यक्ति जो कल यहाँ आया था मौका पस्त है। तीसरा, महीना जब अब उसकी हत्या की गई थी सितंबर का था। इस प्रकार हमने पाया कि क्रिया विशेषण उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य है जो क्रिया विशेषण का काम करता है, अतः यह प्रधान उपवाक्य के किसी क्रिया विशेषण अथवा विशेषण के लिए विशेषता प्रकट करता है अथवा अर्थ को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, जब वह नदी के पास पहुंचे तब उसका पीछा करो। दूसरा, मैंने जितना कहा था उससे वह अधिक कर गया है। तीसरा, वह इतना तेज फिसला कि उसकी बाई टांग टूट गई। क्रिया विशेषण उपवाक्य कई तरह के होते हैं और भेद के विचार से निम्नलिखित भागों में विभक्त हो सकते हैं। पहला, कालवाचक। दूसरा, हेतुवाचक। तीसरा, स्थानवाचक। चौथा, दशावाचक। पांचवा, अभिप्रायवाचक। छठवां, सदृशवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य साधारण तथा जब कभी अथवा जब से ही आरंभ होता है। उदाहरण के लिए, पहला, जब तुम परिश्रम करोगी सफलता मिलेगी। दूसरा, जब कभी वह गाएगा राग विभावरी गाएगा। मैं ज्यों ही पहुंचा वहां से जा चुकी थी। चौथा, जब तक तुम्हारे रहने की कोई व्यवस्था ना बने यहाँ रहो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जहाँ कहीं जहाँ तक से आरंभ होता है। उदाहरण के लिए, पहला, तुम जहाँ हो ठहर सकती हो। दूसरा, तुम जब कभी हाथ में आओगे बहुत मार खाओगे। तीसरा, तुम जहाँ से आए शीघ्र वापस जाओ। चौथा, जहाँ तक हो सकता है प्रयास करना चाहिए। अभिप्रायवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य इसलिए कि अथवा नहीं तो से आरंभ होता है। उदाहरण के लिए, पहला, उसने उसे लेखनी दी इसलिए कि वह पत्र लिख सके। दूसरा, उस पर नजर रखना नहीं तो वह कुछ चुरा लेगा। हेतुवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य क्योंकि इसलिए अतः और जैसा कि आरंभ से होता है। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक तुमने ली है क्योंकि तुम इसे पढ़ना चाहते हो। दूसरा, मैंने देखा कि वह अबोध है अतः मैंने उसे कुछ नहीं कहा। दशावाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य यदि अगर चाहे से आरंभ होता है। उदाहरण के लिए, पहला, अगर तुम दौड़ना चाहते हो तो शीघ्र तैयारी कर लो। दूसरा, यदि पानी गिरा तो किसान बीजारोपण कर लेंगे। चौथा, वह तुमसे उतना ही छोटा है जितना मैं तुमसे बड़ा हूँ। विशेष उपवाक्य कभी कभी संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण अथवा विशेषण से आरंभ होता है। उदाहरण के लिए, जो कुछ भी हो जाए तुम वहाँ से हिलना नहीं। दूसरा, जिस किसी वाहन से जाओगे शीघ्र पहुंच जाओगे। तीसरा, कितनी ही चालाकी क्यों न दिखाओ दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य की से आरंभ होता है। इसका अर्थ पूरा करने के लिए प्रधान उपवाक्य में बहुधा इतना अथवा ऐसा होता है। उदाहरण के लिए, वे इतनी कायरता से लड़े कि शत्रु ने उसके पांव उखाड़ दिए। दूसरा, वह इतनी अच्छी बच्ची है कि सभी उससे प्यार करते हैं। तीसरा, मुझसे लोगों ने ऐसा व्यवहार किया कि मेरा अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। सादृश्यवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य दो मनुष्यों अथवा दो वस्तुओं के गुणों के अथवा अवगुणों की समता के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह इतना सज्जन है जितना हम समझते हैं। दूसरा, वह जितना मेहनती है उतना ही आलसी है। तीसरा, मैं जितना संगीत पसंद करता हूँ तुम उससे अधिक पसंद करते हो।